एक दिसंबर दिन भर दिन मंगलवार, स्वागत है आपका रेहान फदल की ओर से। असहिष्णुता पर बहस में राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले किए, राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आश्वस्त करने की कोशिश की।
मिस्टर शूरी जी ने कहा ये ट्विटर के लोग मेरे ऊपर चढ़े,
आश्वस्त करना चाहता हूँ असहिष्णुता पैदा नहीं होने देंगे।
बात करेंगे कुछ ऐसे परिवारों की जहाँ पुरुष घर का काम संभालते हैं और महिलाएं नौकरी पेशा हैं।
उस वक्त मेरी बच्ची 3-4 साल की थी, उसके साथ मेरा वक्त अच्छा बीतता था, उसको गाइडेंस देना, उसको नहलाना, जो भी एक माँ कर सकती है करने का मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं हमारी पूरी फैमिली में इतना आनंद आने लगा शुरू हुआ था कि मेरा टेंशन सब चला गया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। संसद में आज असहिष्णुता पर बहस में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे गृह मंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री की तरफ से देश को विश्वास दिलाते हैं कि सामाजिक और धार्मिक समरसता को अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता का आरोप पार्टी या सरकार पर नहीं बल्कि भारतीय समाज पर है और ऐसे आरोपों से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को धूमिल होती है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आज विरोध का मतलब देशद्रोह हो गया है। जर्मनी के कैबिनेट ने सीरिया और इराक में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में फ्रांस को सैन्य मदद देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को जर्मनी की संसद से मंजूरी मिलना जरूरी है। जर्मनी फ्रांस को वायुसेना के विमान और नौसेना के पोत और 1200 सैनिकों की मदद दे सकता है जो कि सीधे लड़ाई में शामिल नहीं किए जाएंगे। जर्मनी की रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा, ये मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला है। ये तैनाती खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन हम इस्लामिक स्टेट से लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उसके विस्तार को रोकना चाहते हैं। ये आईएस के खिलाफ लड़ रहे गठबंधन के जरिए किया जाएगा। ये थे उर्सुला वॉन डेर लियन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के इस्लामी विरोधी गुट नुसरा फ्रंट ने कैदियों की अदला बदली में लेबनान के सुरक्षा बलों के अधिकारियों के एक समूह को रिहा कर दिया है। 16 सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को पिछले साल अरसाल शहर में बंदी बनाया गया था। इनके बदले में लेबनान सरकार ने 13 इस्लामी विद्रोहियों को रिहा कर दिया है, जिनमें कथित तौर पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी की पत्नी को भी रिहा किया गया है। ब्राजील, इंडोनेशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो समेत कई देशों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने में जंगलों की भूमिका पर जोर दिया है। एक बयान में इन देशों ने कहा है कि कार्बन के स्तर में कमी लाने के साथ विकास और जंगलों को बचाने के लिए कोशिशों में बढ़ोतरी की जाएगी। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने कहा कि अफ्रीका को लकड़ी का निर्यात कम करना होगा और ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पिछले साल जावा सागर में क्रैश हुए एयर एशिया विमान के जांचकर्ताओं ने कहा है कि दुर्घटना कंप्यूटर कनेक्शन की गड़बड़ी की वजह से हुई थी। जांचकर्ताओं ने कहा है कि विमान के क्रू के सदस्य कंप्यूटर की खराबी को समय रहते ठीक नहीं कर पाए थे। इंडोनेशिया के सुरबाया से सिंगापुर जा रहे विमान ने उड़ान भरने के 40 मिनट बाद ही संपर्क खो दिया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 162 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। एक तरफ जहां आज भी असहिष्णुता पर संसद में जारी बहस में विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए, तो दूसरी ओर सरकार का रुख तुलना में नर्म ही रहा। संविधान पर राज्यसभा में उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सबको साथ लेकर चलने की बात कही, तो लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बुद्धिजीवियों से अपने सम्मान वापस लेने की अपील की। उधर लोकसभा में असहिष्णुता पर बहस के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। विनीत खरे की रिपोर्ट।
संसद में आज ऐसा वक्त भी आया जब एक ही समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो दूसरी ओर लोकसभा में असहिष्णुता पर बहस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रहे थे। प्रधानमंत्री की कथित चुप्पी पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से गलत पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, जहां सरकारों ने आम लोगों की बातें नहीं सुनी और असहिष्णुता को बढ़ावा दिया।
मिस्टर सूरी जी ने कहा कि ट्विटर के लोग मेरे ऊपर चढ़े, मेरे पीछे पड़े और मुझे उन्होंने गाली दी और उनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह कथित तौर पर दलित बच्चों की तुलना कुत्तों से करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज के भारत में विरोध करना राजद्रोह जैसा हो गया है। इससे पहले लोकसभा में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री को कुछ कदम उठाने के लिए कहा।
My suggestion to the honorable home minister is your pride was hurt when a wrong allegation was made. For 69 years I have been called a Pakistani. What about my pride?
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि मैं राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूं कि आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंची जब आपके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए, लेकिन 69 सालों से मुझे पाकिस्तानी कहा जाता रहा है, मेरे आत्मसम्मान का क्या? क्या आप खड़े होकर मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे? क्या आप मेरी ईमानदारी की रक्षा करेंगे? ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सांप्रदायिक दंगों की जांच की शक्ति दी जाए ताकि एसपी और डीएम पर जिम्मेदारी डाली जा सके। उन्होंने हिंदू चरमपंथियों पर नजर रखने के लिए अलग सेक्शन बनाए जाने की गुजारिश की ताकि पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में जो कुछ हो रहा है वैसा होने से बचा जा सके। अंत में ओवैसी ने एक शेर कहा।
शेर अफैज सेठ, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे अर्ज़े बेरंग को गुलनार करे, कितने आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितने आंसुओं से तेरे सहराओं को गुलजार करे। थैंक यू मैडम।
बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद किरण खेर ने कांग्रेस के वक्त की घटनाओं को याद किया।
मेरी फ्रेंड सुप्रिया सुले जी बोल रही थी कि मुंबई में बड़ी घटनाएं होती हैं। मैडम होती हैं घटनाएं, आज से नहीं होती, बहुत सालों से होती है। सुप्रा जी को याद होगा, पहले भी जो पाकिस्तान से हमारे आते थे सिंगर्स वगैरह यहाँ पर, उन सिंगर्स को कई दफा गाने नहीं दिया, कई दफा एक दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लिया।
अंत में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुद्धिजीवियों से अपने अवार्ड वापस लेने की अपील की।
केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि असहिष्णुता बढ़ी, अब हम भ्रष्टाचार पर सहिष्णु नहीं है, आतंकवाद पर अध्यक्ष महोदया हम सहिष्णु नहीं है। हम अपनी सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी राजनीतिक दलों को भी, सभी कलाकारों को भी, सभी बुद्धिजीवियों को भी, कि हम किसी भी सूरत में यहां पर असहिष्णुता पैदा नहीं होने देंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दिया और कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।
125वीं जयंती संविधान की चर्चा हो तो बाबा साहब अंबेडकर की हो, लेकिन साथ साथ संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर समेत सभी को नमन करते हैं, सभी को आदर करते हैं।
उधर विश्लेषक पूछ रहे हैं कि सरकार के नर्म तेवर क्या बिहार चुनाव के नतीजों का असर है या फिर ये बदलाव स्थायी है।
लोकसभा में असहिष्णुता पर बहस। पिछले हफ्ते तुर्की द्वारा रूसी सैन्य विमान गिराए जाने पर दोनों देशों के बीच तू तू मैं अभी थमी नहीं है। पेरिस में मौसम के बदलाव पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने चरमपंथी गुट आईएस से मिलने वाले तेल को बचाने के लिए रूसी विमान को मार गिराया। जाहिर है इस पर तुर्की से तीखी प्रतिक्रिया होनी ही थी। दूसरी तरफ यूरोप के अन्य देश आईएस के खिलाफ एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं से मिले ब्यौरों का सार सुना रही हैं प्रगति सक्सेना।
पेरिस में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा,
हमें अब ये जानकारी मिली है कि आईएस के कब्जे वाले क्षेत्र में उत्पादित तेल तुर्की को बेचा जा रहा है। हमारे पास इस बात पर यकीन करने की वजह है कि हमारे विमान को इसलिए गिराया गया ताकि तुर्की के क्षेत्र में जिस रास्ते से ये तेल ले जाया जाता है उसे सुरक्षित किया जा सके।
इस पर तुर्की ने रूस को चुनौती दी है कि वो अपने इस दावे को साबित करे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने कहा कि रूस ने जो आर्थिक प्रतिबंध तुर्की पर लगाए हैं, तुर्की उन पर सब्र से काम लेगा, लेकिन जो इल्ज़ाम राष्ट्रपति पुतिन ने लगाए हैं वो तुर्की पर लांछन लगाने के बराबर हैं।
Bizim biliyorsunuz petrol kaynağımız जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तेल के स्रोत जग जाहिर हैं। हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम ईरान, अजरबैजान, इराक, अल्जीरिया, कतर और नाइजीरिया से तेल खरीदते हैं। दूसरों पर दोष लगाना तो उनकी परंपरा है। इस दोषारोपण से हम किसी हल पर नहीं पहुंच सकते।
राष्ट्रपति एर्दोगान के शब्द। उधर तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने इस पूरे मामले में नरम लहजा अपनाते हुए कहा कि रूस और तुर्की पड़ोसी हैं और उन्हें मिलकर अपने मतभेदों को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा।
उम्मीद ederiz ki bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Böyle bir olayı yaşanmasına sebebiyet verecek provokatif girişimler, provokatif adımlar atılmaz.
हमें उम्मीद है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन तुर्की की अपनी सीमाओं की हिफाजत करने की मंशा पर कोई शक नहीं होना चाहिए। हम रूस का आह्वान करते हैं कि इस पूरे मसले पर बातचीत करें, राजनयिक और सैन्य स्तर पर कोशिश करें कि ऐसी घटना न हो। देशों और लोगों की किस्मत भूगोल निर्धारित करता है। तुर्की और रूस दोनों पड़ोसी हैं और ये तथ्य बदल नहीं सकता। इसलिए रूस को चाहिए कि वो तुर्की पर आधारहीन आरोप न लगाए और साथ बैठकर इस मसले पर बातचीत करे।
प्रधानमंत्री दावूतोग्लू के शब्द। रूस और तुर्की के बीच पिछले हफ्ते से लगातार चल रहे इस तनाव के बीच यूरोपीय संघ और अमरीका तटस्थ रवैया अपनाते हुए सीरिया में चरमपंथी गुट आईएस का सामना करने की रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं। फ्रांस ने जमीनी लड़ाई में सीरिया के सरकारी बलों की मदद लेने की बात कही है, तो जर्मनी के मंत्रिमंडल में फ्रांस को इस लड़ाई में सैन्य सहायता देने पर सहमति बन गई है। जर्मनी की एक सांसद फ्रांसिस्का ब्रांटनर ने बीबीसी को बताया कि अगर इस ऑपरेशन का मकसद स्पष्ट है तो जर्मनी की जनता इसमें शामिल होने का समर्थन करती है। अंतर्राष्ट्रीय रुख से तो यही लगता है कि तमाम तरह की बयानबाजी के बावजूद तुर्की और रूस को आखिरकार अपने मतभेदों को दरकिनार कर फिलहाल सीरिया में जड़ें फैला रहे चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट का सामना करने पर ध्यान देना होगा।
तुर्की और रूस के बीच वाकयुद्ध जारी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनी के कार्यालयों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। ये एयरसेल मैक्सिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा मामला है। माना जा रहा है कि इन कंपनियों द्वारा टैक्स से जुड़े कुछ अहम तथ्य छुपाने की वजह से आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है। मैंने थोड़ी देर पहले चेन्नई फोन कर के वी लक्ष्मणा से बात की और इन छापों का विवरण मांगा।
ये रेड्स जो हैं शुरू हो गए थे सवेरे 8 बजे और टीम दिल्ली से आई थी और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खुलासा तो कुछ किया नहीं है, लेकिन हाँ ये रेड्स होंगे करके तो ये अंदाज़ा लग ही रहा था कि पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है इसी केस में। एलिगेशंस ये हैं कि इनके जो बेटे के जो कंपनी है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, वो जो एयरसेल मैक्सिस डील में इन्वॉल्व थी, तो उसके चलते अब जो सरकार के बदलने के बाद में उस केस में तेजी आई है और ऊपर से यहाँ पे जो एक वरिष्ठ पत्रकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं एस गुरुमूर्ति जी, उन्होंने भी इस केस के ऊपर काफ़ी खुलासे किए हैं और जिसका खंडन जिस तरीके से होना चाहिए वैसे हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिदम्बरम साहब का जो कहना है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है या मेरे को नहीं मेरे बेटे को टारगेट किया जा रहा है, वो हो सकता भले उसमें कोई हल्की सी सच्चाई हो, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके का केस तो बना हुआ है, जब केस एक बार बन जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी तो मतलब काफी लॉजिकल है कि ये इसमें कार्रवाई चल रही है अभी।
चिदम्बरम की तरफ से क्या वक्तव्य आया है, उन्होंने इस पर क्या टिप्पणी की है इस पूरे मामले पर?
उन्होंने ये कहा है कि हमारे खिलाफ अगर सरकार को एक्शन करना तो हमें करें, हमारे बेटे को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और उनका ये भी कहना है कि उनका बेटे का या इन कंपनी से कुछ उस तरीके का लेना देना नहीं है और ये प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं और वो कंपनीज को कोई सवाल जवाब करेंगे वो सक्षम है। उसमें उनके बेटे को घसीटने का जो है वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हमारे खिलाफ जो साजिश है उसके चलते हो रही है।
ये थे चेन्नई से वरिष्ठ पत्रकार के वी लक्ष्मणा। दुनिया में बदलते हुए मौसम से पाकिस्तान का 1100 किलोमीटर तट भी प्रभावित हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के अनुसार वहां समुद्र की सतह हर साल बढ़ रही है। ठट्ठा और सजावल में हालात बहुत खराब हैं, जहां मीठा पानी खारा होता जा रहा है। वहां की जमीन बंजर होती जा रही है और जिंदगी मुश्किल। केटी बंदर पाकिस्तान से रिया सोहेल ने ये रिपोर्ट भेजी है।
इन बच्चों का खेल और रोजगार यही है, कोई जमाना था कि माहिगीरों के जाल मछलियों से भरे होते थे, लेकिन समंदर की खुशहाली अब इन बुजुर्गों के किस्सों में ही रह गई है। समंदर एक बार फिर इस आबादी को पीछे धकेल रहा है, लेकिन इन लोगों की समंदर से लड़ाई जारी है। हालांकि 20 साल कबल वो ये लड़ाई हार चुके हैं।
मुझे समझ वो गोटना पर उन गोट के वेजो
जब मैंने होश संभाला तो समंदर वो सामने जो गांव नजर आ रहा है ना वहां तक था। लोग पीछे होते जा रहे हैं और समंदर आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी जगह कहां जाएं, इनका रोजगार यहां है।
मौसमी तगैयर और दरियाए पानी की आमद ना होने की वजह से इंडस डेल्टा में वाकई होने वाली तब्दीलियां उसके इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन रही हैं। सिदिक दबलो गांव में हर साल जून जुलाई में समंदर का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। माहौल की बका के लिए काम करने वाले इदारे WWF ने नुकसान से बचाव के लिए घर का ये नमूना पेश किया है।
पहले हमारे घर निचली सतह पर थे, जैसे पानी आता था डूब जाते थे, राशन और दीगर सामान खराब हो जाता था। WWF वालों ने मदद की तो हमने ये घर बनाया है जिससे नुकसान कम होता है।
समंदर तेजी के साथ खुश्की को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। महकमा ओशनोग्राफी के मुताबिक हर साल समंदर की सतह में 1.2 मिलीमीटर इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में इस समय लाखों एकड़ ज़मीन समंदर बुर्द हो रही है। जेर ज़मीन समंदर का नमकीन पानी मीठे पानी को धकेलता ऊपर चढ़ रहा है, जिसने सतह ज़मीन का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 50 वर्षों में 35 लाख एकड़ ज़मीन बंजर हो चुकी है, जबकि पीने का पानी नापैद है। मौसमी तब्दीलियों ने ज़रात और माहिगीरी से वाबस्ता इन साहली लोगों की ज़रिया माश को महदूद कर गुरबत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। इसी वजह से यहाँ पे गिजाइत की कमी के मसाइल जन्म ले रहे हैं।
यहाँ जेरे ज़मीन पानी खा रहा है, मीठा पानी पैसों पर लेते हैं। सब्जी वगैरह की काश्त नहीं होती, इस वजह से सब्जी महंगी मिलती है। चारा ना होने की वजह से जानवर पालना मुश्किल है।
पाकिस्तान में बाज़ माहिरीन का कहना है कि अगर समंदर की पेशकदमी न रोकी गई तो 2050 तक यह ठट्टा और कराची को भी मुतासिर कर सकता है। ताहम हुकूमत की इस पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। रियाज़ सोहेल, BBC, केटी बंदर, ठट्टा।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 0.35% आबादी HIV से पीड़ित है और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें गिरावट आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में हैं। एक तरफ तो HIV प्रभावित लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन क्या HIV पीड़ितों को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आया है? विश्व एड्स दिवस पर यही जानने के लिए विनीत खरे ने HIV प्रभावित लोगों से बात की।
मुझे एक इन्फेक्शन पहले बचपन से ही था, उसी के लिए मैं जाता था SMHS। वहाँ से जो दवाई देते थे मुझे वही अनसिक्रेट दवाई था, उसी से मुझे इन्फेक्शन हो गया। कभी कभी तो मुझे एक एक महीना एडमिट रहना पड़ता था हॉस्पिटल में। पहले मैंने देखा कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव निकला तो मुझे पहले उन्होंने नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। दोस्ती ने बताया कि शाम को उसने मुझे फ़ोन किया, क्या बात है कि आज आपने ये टेस्ट जो किया है तो ये पॉजिटिव कैसे आया? मैंने बोला कि क्या, मुझे भी नहीं बोला ना उन्होंने कि क्या पॉजिटिव आया है। फिर मुझे बोला कि आपको HIV पॉजिटिव हुआ है। इतना घबरा गया मैं कि मैंने खाना भी नहीं खाया। कम से कम मैं एक महीने तक बिल्कुल रो रहा था सर, ना मैं कुछ खाता था सर, बिल्कुल अकेला मैं रहना चाहता था उस टाइम, वो रहता था अभी। मुझे अभी तक फैमिली को पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूँ लेकिन वो फिर जिंदा नहीं रहेंगे अगर मैं उनको बोलूँगा। काउंसलर ने मुझे बोला कि उसने मुझे काउंसलिंग की, ऐसा टेस्ट होता है क्योंकि इसमें CD4 चेक करना पड़ता है, CD4 लेवल देखनी पड़ती है, कब दवाई स्टार्ट होती है ये भी देखो किस लेवल पे स्टार्ट होता है और कब स्टार्ट नहीं होती है ये भी बोला सर। सर मैं यही बताना चाहता हूँ पेशेंट को, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जैसे इंसान 2 दिन में मर जाएगा या बिस्तर में बैठना है, जैसे कि घर वाले बैठेंगे वहीं पे बिस्तर में खाना मैसे डालेंगे मुंह में। बिल्कुल अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं मिलजुल के सबके साथ, और लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ सर, क्योंकि बिल्कुल HIV पेशेंट जो भी है कि ये हमारे बिल्कुल भाई है।
2012 में HIV पॉजिटिव हो गए थे। एक्चुअली हमारे साथ एक रेप हो गया था,
और रेप होने के बाद हमको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीट करने के लिए मना कर दिया क्योंकि रेप केस है, पुलिस स्टेशन जाओ। पहले पुलिस स्टेशन ने कहा कि ये रेप केस है, हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। फिर उसको हमको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फिर प्राइवेट में जाके हमको ट्रीटमेंट करना पड़ा। जब प्राइवेट में हम चले गए तो हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, वहाँ से हमको पता चला कि हम एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। डॉक्टर ने डायरेक्टली हमको नहीं बताया था, एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी बेस्ट फ्रेंड, उसको बुला के पूछा कि ये क्या काम कर। उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे ऐसे उनका रिपोर्ट रिएक्टिव आया है, तो आप एक बार गवर्नमेंट आईसीडीसी सेंटर से भी आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए। हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चेक किया, तब जाके पता चला कि हम पॉजिटिव आ चुके हैं। लाइक डिप्रेशन में चले गए थे, सुसाइड करने की कोशिश की थी, पॉइजन लेके चलते थे। तो मेरी फ्रेंड ने एक दिन मुझे कहा कि ठीक है तुम्हें पॉइजन ही खाना है तो खा लो ना फिर। तो फिर उसने कहा कि रुक जाओ पहले ये पॉइजन की बोतल हमें दे दो, हम तो कुछ लोगों से मिलाना चाहते। फिर हम कुछ और लोगों से मिले आरटी सेंटर रजिस्ट्रेशन होने के बाद। वहाँ पे आने जाने लगे तो बहुत से लोगों से इंट्रैक्शन शुरू हो गया और फिर बहुत से लोग ऐसे थे कि जो एचआईवी की दवा 10-10, 12-12 साल से खा रहे हैं पर जी रहे हैं, कुछ कुछ 18 साल के ऊपर हो गए हैं दवा खा रहे, वो लोग भी जी रहे हैं, अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं। तब हमको थोड़ा सा मतलब एक ये मिला कि चलो हम जिएंगे, पर उसके लिए भी हमने फिर एक डिसीजन लिया कि नहीं हम जिएंगे पर हम लोगों की जिंदगी बचाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे।
एचआईवी प्रभावित लोगों से बातचीत। एक परिवार के बारे में अगर आप सोचते हैं तो अक्सर यही छवि उभर कर आती है कि पुरुष काम काज कर पैसा कमाता है और महिला घर संभालती है, या फिर दोनों कामकाजी होते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे परिवारों से जहां पुरुष हाउस हस्बैंड है, यानी पुरुष घर का कामकाज संभालते हैं और महिलाएं नौकरी पेशा हैं। बीबीसी संवाददाता वंदना ने बात की कुछ ऐसे ही परिवारों से।
28 साल के विश्वास बालन केरल में रहते हैं। खाना पकाने, घर की साफ सफाई, राशन पानी लाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का जिम्मा इनका है। दरअसल विश्वास हाउस हस्बैंड है, यानी वो पुरुष जो घर पर रहकर घरेलू काम संभालते हैं और पत्नी कामकाजी है। विश्वास पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अच्छी खासी नौकरी करते थे। फिर उन्होंने हाउस हस्बैंड या घर में रहने का फैसला क्यों किया?
We were college mates. I go to work in morning and I come by night. Then whereas she will go to work by evening and he will come back by early morning or some 1 o'clock or 2 o'clock in morning.
सारिका से मेरी दोस्ती कॉलेज के समय से थी। उनसे शादी करने का मकसद यही था कि हम साथ समय बिता सकें, लेकिन मैं सुबह काम पर चला जाता और रात को आता था। मेरी पत्नी शाम को दफ्तर जाती थी और अगले दिन तड़के लौटती थी। हम मिल नहीं पाते थे, फिर शादी का क्या मतलब? मेरा करियर तो जैसे तैसे चल रहा था, पर मुझे लगा कि मेरी पत्नी को करियर में आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें मुझसे कहीं ज्यादा प्रतिभा है। मैंने घर के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल ली।
धीमे धीमे ही से ही भारत में हाउस हस्बैंड का चलन देखने को मिल रहा है, जहां पति घर में रहकर घरेलू कामकाज संभाल रहे हैं। पुणे के रहने वाले अतुल अग्निहोत्री 17 साल से हाउस हस्बैंड हैं। 90 के दशक में इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें नौकरी तो मिली, पर बुरी तरह शराब की लत लग गई। तब कामकाजी पत्नी अरुंधति ने उनके सामने कुछ समय के लिए घर पर रहने का ही प्रस्ताव रखा।
उस वक्त मेरी बच्ची 3-4 साल की थी, उसके साथ मेरा वक्त अच्छा बीतता था। उसको गाइडेंस देना, उसको नहलाना, जो भी एक माँ कर सकती है करने का मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। हमारी पूरी फैमिली में इतना आनंद आने लगा, शुरू हुआ था कि मेरा टेंशन सब चला गया। मेरी बीबी ने और मैंने ऐसे ये कंटिन्यू करने का हमने ये किया।
घर संभालने वाले अपने पिता के साथ रिश्ते पर बेटी मृणमयी को फक्र है।
जब मैं छोटी थी तब ये बात का मुझे बहुत आनंद रहता था कि मेरे पिताजी घर पे है, क्योंकि तब किसी के पिताजी घर पे रहते नहीं थे।
पेरेंट टीचर मीटिंग में छोटे जब थे तो कौन आता था?
कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चों की माएं आती थी और खाली मेरे पिताजी रहते थे।
लेकिन इस अनोखे रिश्ते से पति पत्नी के रिश्तों में आखिर क्या असर पड़ता है? विश्वास बालन की पत्नी सारिका।
A lot of things you don't have to bother about, so I can concentrate on my work on other things which are important.
मुझे कई चीजों की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। सबसे अच्छी बात है कि जब मैं रात को काम से लौटती हूँ तो घर पर किसी को मेरा इंतजार होता है। मैं दिन भर की परेशानियाँ विश्वास के सामने उड़ेल देती हूँ, बजाय इसके कि पति पत्नी दोनों दफ्तर से उकताकर घर पहुँचे और किसी बात पर बिफर जाएं।
वहीं अतुल का मानना है कि उनकी पत्नी की पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आया है।
वो अपने आप को बहुत वक्त दे सकती थी, बाहर अच्छे अच्छी ड्रामाज हो या सिनेमाज हो, ये देखने का मौका मिला और उसकी वजह से उनकी एक थॉट प्रोसेस भी उनकी एक अच्छी हो गई, सोशली अवेयर होने लगी, अपने आप को उन्होंने भी एक बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया।
जमाल शेख मैंस वर्ल्ड मैगजीन के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। हाउस हस्बैंड के इस चलन के बारे में उनका मानना कुछ यूं है।
कन्वेंशनल जेंडर रोल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वुमेन है तो घर पे बैठ के उनका एक्सपर्टीज ये होगी कि घर पे बैठ के काम करो, या अगर आदमी हो तो आपकी एक्सपर्टीज यही होगी कि जाके ऑफिस में पैसे कमाओ। और आप ये बहुत सरप्राइज होंगी जान के कि कितने घर पे रहने वाले हस्बैंड जो घर संभालते हैं वुमेन से बेटर घर संभालते हैं।
रोहतक के धीरेश सैनी की पत्नी असम राइफल्स में काम करती है। धीरेश ने भी घर का जिम्मा संभालने का फैसला किया। धीरेश, विश्वास या अनिल जैसे लोगों के लिए हाउस हस्बैंड बनना आसान फैसला था, पर दूसरों के लिए इसे बचाना मुश्किल रहा।
वो लोग बोल देते हैं कि औरत का गुलाम हो गया, फला हो गया, जोरू का गुलाम है, इतने लुगाई की कमाई खा रहा है। कुछ लोग हमें ये भी सोचते हैं कि थोड़े से सनके हुए लोग हैं, शायद कमेंटबाजी करते ही हैं।
हाउस हस्बैंड बनने के बाद आए बदलावों के बारे में कई पतियों का मानना है कि वो पुरुष होकर अब एक औरत का नजरिया बेहतर समझने लगे हैं, या कहें तो रिश्तों में और मिठास घुल गई है। तो हाउस हस्बैंड होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब मैंने विश्वास बालन से पूछा तो उन्होंने हंसते हुए बताया कि मुझे तो अब रोज जेब खर्च मिलता है, सैलरी ऑन डिमांड, महीने के आखिर तक तनख्वाह के लिए रुकना नहीं पड़ता। वहीं अतुल अग्निहोत्री को एक ही मलाल है, वो आज भी रोटी गोल बनाना नहीं सीखी।
नहीं मैडम, आज भी महिला की तरह उतनी अच्छी नहीं होती, आज भी
गोल नहीं होती।
नहीं, गोल नहीं होती, ये मैं कबूल करने में मुझे जरा भी हिचकिच नहीं है।
वैसे हाउस हस्बैंड का कोई सटीक हिंदी रूपांतरण आपकी समझ में आए तो हमें जरूर बताएं। वंदना, BBC दिल्ली।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर आदेश कुमार गुप्त की ओर से।
कल देर रात शारजाह में समाप्त हुए तीसरे और आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक ओवर एलिमिनेटर में हराया। दरअसल इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन बनाए। ऐसे में मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। पाकिस्तान के शोएब मलिक ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए केवल 54 गेंदों पर 75 रन बनाए, लेकिन सुपर ओवर में पाकिस्तान एक विकेट खोकर केवल 3 रन बना सका। जवाब में इंग्लैंड ने 4 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज एक तरफा रूप से 3-0 से जीत ली। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर पिछले दिनों लगातार तीसरी बार मकाऊ ओपन जीतने वाली भारत की पीवी सिंधु कल से इंडोनेशियन मास्टर्स में अपना दमखम दिखाएंगी। इंडोनेशियन ओपन में पीवी सिंधु को शीर्ष वरीयता दी गई है। कल पहले दौर में उनका सामना इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का से होगा। पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत को भी शीर्ष वरीयता दी गई है। कल पहले दौर में वो इंडोनेशिया के विबोवो सेत्यालदी पुत्र से खेलेंगे। वहीं रायपुर में खेले जा रहे वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स में कल रात समाप्त हुए मुकाबलों में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 3-1 से मात दी। इससे पहले कल ही नीदरलैंड्स ने भारत को 3-1 से हराया था। इसके साथ ही भारत अपने पूल बी में चौथे और आखिरी स्थान पर रहा।
और अब चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। संसद में आज असहिष्णुता पर बहस में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सामाजिक और धार्मिक समरसता को अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आज विरोध का मतलब देशद्रोह हो गया है। जर्मनी के कैबिनेट ने सीरिया और इराक में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में फ्रांस को सैन्य मदद देने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव को जर्मनी की संसद से मंजूरी मिलना जरूरी है। सीरिया के इस्लामिक विरोधी गुट नुसरा फ्रंट ने कैदियों की अदला बदली में लेबनान के सुरक्षा बलों के अधिकारियों के एक समूह को रिहा कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।